ಓಂ ನಮಃ ಸಿದ್ಧೀಭ್ಯ ಪ್ರಣಮೋ ಅರಿಹಂತಾಣ ಪ್ರಣಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ ಪ್ರಣಮೋ ಆಯರಿಯಾಣ ಪ್ರಣಮೋ ವಜ್ಜಾಯಾಣ ಪ್ರಣಮೋಲೋಯ ಸವ್ವಸಾಹು प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 80 अर्थात 80 और गाथा क्रमांक 86 इन दो गाथाओं में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अरहंत भगवान के आलंबन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है इसका चित्रण किया है, मिथ्यात्व का नाश होता है इसका चित्रण किया है और पहले तो ये कहा कि जो मानव द्रव्यत्व से गुणत्व से और पर्ययत्व से त्व त्व एक ऐसा प्रत्यय है जो भाववाचक होता है। तत् और त्व इनको जोड़ दीजिए तो तत् त्व बनता है। तत्व में बीच में दो त होते हैं, एक तत्व वाला त होता है और एक त्व वाला त होता है। पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं कि तस्य भावस्तत्वम, तत् का अर्थ है तस्य और त्व का अर्थ है भाव, तो उसका जो भाव है उसको तत्व कहते हैं। द्रव्यत्व, द्रव्यस्य भावः, द्रव्यस्य स्वभावः द्रव्यत्वम्। गुणत्व, गुणानां भावः, गुणानां स्वभावः गुणत्वम्। पर्ययत्वम्, पर्ययाणां भावः स्वभावः पर्ययत्वम्। यानी ये स्वभाव की बात हो गई। द्रव्य गुण पर्याय जो है ना, द्रव्य गुण पर्याय और द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव, इन दोनों में अंतर है। कैसा अंतर है तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। संभवतः आचार्य महाराज ने अपनी टीका में दिया हो, सुंदर टीका है, उसको अपन पढ़ेंगे आज। अभी इतने दिनों तक अपन ने अरहंत भगवान का वर्णन सुना है, उनके गुणों का भी वर्णन सुना, उनकी अवस्था कैसी होती है, पर्याय कैसी होती है उसको भी जाना है अपन ने। परम औदारिक शरीर के अंदर उनकी आत्मा प्रतिष्ठित रहती है, विराजमान रहती है, और आत्मा के जो क्षायिक भाव है उनको अपन ने देखा, और औदयिक भाव जिसके प्रभाव से जो उनके पराश्रित गुण है उनको भी अपन ने समझा। और वो पराश्रित गुण होने से उनमें गुणत्व का अभाव नहीं हो जाता, पराश्रित होते हुए भी उसके स्वामी अरहंत ही रहते हैं। तो नमो अरहंताणम कहते समय उनके स्वाश्रित पराश्रित सारे गुणों का समावेश किया जाता है। तो द्रव्य स्वभाव से, गुण स्वभाव से, पर्याय स्वभाव से जो अरहंत को जानते हैं वह अपाणम जानति, आत्मा को जान लेते हैं, आत्मा को पहचान लेते हैं। परमात्मा को जाना तो आत्मा को पहचाना, और तस् मोह खलु लयम जाति, उनका जिसने भी जाना है उसका जो मोह अर्थात मिथ्यात्व भाव है वह खलु नियम से लयम जाति विलय को प्राप्त हो जाता है, अभाव को प्राप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मिथ्यात्व समाप्त हो गया तो स्पष्ट है कि जिसके पास मिथ्यात्व नहीं है उसके पास सम्यक्त्व है इस प्रकरण में। तो आचार्य महाराज ने जो टीका में पंक्ति लिखी है, अथ कथम मया विजेतव्य मोह वाहिनी त्यपाय मालोचयति, अब मुझे मोह रूपी सेना कैसी जीतनी है उसका उपाय दर्शाते हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी। वो बता रहे हैं कि अरहंत को अगर इस विधि से जान लोगे तो अपने को पहचान लोगे, और परमात्मा और आत्मा को जान लोगे पहचान लोगे तो मिथ्यात्व नियम से समाप्त हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा। अब यहां पर मोह का अर्थ दर्शन मोह इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आगे चल करके एक गाथा आने वाली है जो 81 क्रमांक गाथा है, इसके बाद वाली ही गाथा है, उसमें आचार्य कह रहे हैं कि फिर मोह के बाद राग और द्वेष को कैसे नष्ट किया जाता है, अथवा राग और द्वेष को नष्ट करने से क्या लाभ होता है। मोह तो चला गया, अब राग और द्वेष को भी अगर चले गए तो क्या परिणाम निकलेगा, वो इसकी बाद की गाथा में लिखा हुआ है। तो इसलिए यहां पर मोह शब्द का अर्थ मिथ्यात्व को लेना होगा, है ना। थोड़ा आगे पीछे देख करके अगर अपन अर्थ निकालते हैं ना तो निर्दोष अर्थ निकलता है, और अगर सीधे सीधे अपन अर्थ निकालते हैं तो कभी कभी चूक हो जाती है। तो इसमें देखिए, अब पहली पंक्ति अपन पढ़ चुके थे, यो ही नामारहंतम द्रव्यत्व गुणत्व पर्ययत्व ही परिच्छिनत्ति सखल्वात्मान परिच्छिनत्ति उभयोरपि निश्चयेना विशेषात्। पहली पंक्ति में ये कहा था आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने कि जो वस्तुतः द्रव्यत्व गुणत्व और पर्ययत्व की अपेक्षा से अरहंत को जान लेता है वह नियम से आत्मा को पहचान लेता है। क्यों? तो उसका कारण दिया, उभयोरपि निश्चयेना विशेषात, निश्चय से देखो तो परमात्मा में और आत्मा में अविशेषात अंतर नहीं है, समानता है। अब जो असमानता है वो द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा है, लेकिन द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व की अपेक्षा से असमानता नहीं है, ये महत्व की बात है। और उस समानता को जब जान लिया जाता है तब आत्मा को पहचान लिया जाता है, बड़ी गूढ़ बात है। देखिए, अब इसको अपना दृष्टांत से समझते हैं। आप में से बहुत से ऐसे श्रोता बंधु भगिनी होंगे जो आभूषण से युक्त होंगे, उन आभूषणों में कईयों के पास स्वर्ण के आभूषण भी होंगे, और स्वर्ण के आभूषण कुछ छोटे भी होंगे कुछ बड़े भी होंगे। कर्णाभूषण का वजन अंगुलीयक अंगूठी से थोड़ा कम होता है, और अगर वो बड़ा हो तो फिर उसका वजन अधिक भी हो सकता है। कंठ का जो आभूषण है जिसको आभरण भी कहते हैं, कंठाभरण, उसका भी अपना भार होता है। इसी तरह अंगद जो अपन भुजा में धारण करते हैं, कटक जो कलाई में धारण करते हैं, और नूपुर जो चरणों में धारण किए जाते हैं, इन सभी आभूषणों के अपने अपने भार होते हैं, इसलिए इनका मूल्य भिन्न होता है। जो भार में कम है उसके लिए आपको कम राशि देनी पड़ती है, और जिसका भार अधिक है, जैसे स्वर्ण को तोले में नापा जाता है, तो जो ज्यादा तोले वाला सोना है या जो भी आभूषण है जिसके वजन का माप अधिक आ रहा हो, जिसका भार अधिक आ रहा हो, तो उसके लिए उतना मूल्य अधिक देना होगा, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड है, एक इकाई है उसकी, कि उसका मूल्य तोले के हिसाब से होता है। तोला कहीं पर 10 ग्राम माना जाता है, कहीं 12 ग्राम माना जाता है, तो उस तोले के हिसाब से वजन उसका मूल्य होता है। तो जिसमें अधिक वजन होगा उसका उतना अधिक मूल्य होगा, सीधा सा गणित है, सब लोग लगभग समझते ही हैं इस बात को। पर इसमें एक बात और समझने की है कि स्वर्ण में ताम्र का मिश्रण कितना है अथवा किसी अन्य धातु का मिश्रण कितना है, इस पर भी उसकी शुद्धता निर्भर करती है। जो प्योरेस्ट गोल्ड होता है, जो शुद्धतम स्वर्ण होता है, उसको यहां भारत में 16 बानी का सोना कहते हैं, और वेस्टर्न भाषा में उसको, पश्चिमी भाषाओं में 24 कैरेट्स गोल्ड बोलते हैं। तो ये 24 कैरेट्स गोल्ड या 16 बानी सोना उस स्वर्ण को कहा जाता है जिसमें मिश्रण नहीं है। फिर 15 बानी का भी सोना होता है, 14 बानी का भी सोना होता है, उसके मूल्यों में अंतर होता है थोड़ा। 24 कैरेट से अगर कम 20 कैरेट का अगर गोल्ड होगा तो फिर उसमें मूल्य में फर्क पड़ जाएगा। तो सबसे कॉस्टली जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, और गोल्ड जो होता है वो प्यूरिफाइड भी होता है और वर्जिन गोल्ड भी होता है, जो सहज खदानों से प्राप्त होने वाला स्वर्ण पाषाण है। हम नहीं जानते कि आपने देखा कि नहीं, लेकिन ये MIDC कॉरपोरेशन है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC, एक नासिक के पास एक सिन्नर नाम का एरिया है, जिसका वर्णन हमने एक बार भक्तामर स्त्रोत्र के 20वें काव्य की व्याख्या में किया था। वहां पर मामा भांजा दो लोगों ने मिलकर, एक वायुसेना और एक जल सेना वाले, दोनों भारतीय सेना के सदस्य रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर के जो पृथ्वी के नीचे मिलने वाले बहुमूल्य वस्तुएं होते हैं प्राकृतिक अवस्था में, जिनसे कोई मानव ने कोई छेड़खानी नहीं की है, ऐसी वस्तुओं का उन्होंने एक बड़ा भारी संग्रहालय बनाया जिसका नाम है गारगोटी संग्रहालय। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और प्रतिदिन अनेक विदेशी लोग और अनेक पर्यटक लोग आकर के वहां जाकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो वो लोग हमें भी बड़े आग्रह के साथ ले गए थे, तो फिर बाद में उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी लिया था। उन्होंने बहुत सारी चीजें, माणिक के पत्थर थे, रजत के मतलब चांदी के पत्थर थे, ताम्र पाषाण भी थे वहां पर, और इसके अतिरिक्त स्फटिक के पत्थर थे, और नीलम, पुखराज, पन्ना, हीरा, स्फटिक आदि विभिन्न प्रकार के रत्नों की पाषाणें वहां पर उपलब्ध थी, और उन्होंने अलग अलग उसके खंड बनाए थे और व्यवस्थित रूप से उसको रखा था। और उस दिन शायद वो आपके जो सागर अथवा नागपुर में जहां भी रत्नों का संग्रह था वो आप लोगों ने भी हमें दिखलाया था। तो उस संग्रह में स्वर्ण पाषाण भी रखा हुआ था, अभी भी रखा हुआ है, वो बिल्कुल गिट्टी जैसी है, लगभग इतनी साइज होगी उसकी। हमने पूछा कि ये तो बिल्कुल पत्थर जैसा लग रहा है, बोले कि हाँ पत्थर ही है वो, सोने का पत्थर बोलते हैं इसको, और इसमें अगर हम प्रतिशत निकालते हैं कि कितने प्रतिशत स्वर्ण है, तो इसमें 90% स्वर्ण है और 10% जो है वो पाषाण रूप है। तो अब उसने वो 90% स्वर्ण है ये कैसे पता किया? तो ये मेटलर्जी नाम का एक विज्ञान होता है जिसमें वो धातु शास्त्री ये सारी चीजें परख लेते हैं और जो उसके गुणधर्म होते हैं उसको वो पकड़ते हैं। गुणधर्म को अंग्रेजी भाषा में, साइंस की भाषा में प्रॉपर्टीज बोलते हैं, हिंदी में गुणधर्म बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फिर प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि इतने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में उसका वेट कितना है, भार कितना है, क्योंकि हर वस्तु 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में समान भार वाली नहीं होती। कुछ वस्तुओं का भार अधिक होता है, जैसे नमक है, उसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, अगर सेंधा नमक की ऐसे तराश करके आप ऐसी आकृति बना दो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की और उसका वजन ले लो तो एक निश्चित वजन आएगा। और अगर शर्करा के खंड का उसी आकृति में आप वजन लोगे तो मिश्री का वजन नमक से कुछ अलग आएगा और फिटकरी का वजन लोगे तो अलग आएगा। इसी तरह चांदी का वजन लोगे तो अलग आएगा, सोने का वजन लोगे तो अलग आएगा, और भिन्न भिन्न धातुओं का आप वजन लेंगे उनका अलग अलग वजन आता है। तो स्वर्ण थोड़ा भारी होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में स्वर्ण जो होता है वो चांदी, तांबा आदि सबसे अधिक वजनदार होता है। और कोमलता देखोगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, तो ये भौतिक गुणधर्म है उसके। कोमलता देखोगे तो स्वर्ण कोमल होता है, स्वर्ण कोमल धातु है और उसमें ताम्र वगैरह मिलाने पर उसमें कठोरता आ जाती है, लेकिन अपने आप में शुद्ध स्वर्ण जो होता है बहुत मुलायम होता है। और फिर उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज अगर अपन देखें, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका वर्ण कैसा होता है, तो पीत वर्ण तो होता ही है लेकिन एक विशिष्ट पीत वर्ण होता है स्वर्ण का। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती, तो चमक वाला पीत वर्ण होता है, उसमें कांति होती है, प्रत्येक धातु में अपनी कांति होती है, तो ये उसका एक गुणधर्म है। ये भौतिक गुणधर्म हो गए। फिर रासायनिक गुणधर्म क्या है? रजत में अगर काला नमक आप रख दो तो उसका वर्ण जो है परिवर्तित हो जाएगा। स्वर्ण में आप काला नमक रखो या आंवला रख दो या दही डाल दो तो वर्ण नहीं बदलेगा। और प्योर ब्रॉन्ज होगा, ब्रॉन्ज का अर्थ होता है कांसा, शुद्ध कांसे की पहचान है कि उसमें आप दही डाल दो तो फिर वो निशान नहीं पड़ते दही के। ऐसे अलग अलग धातुओं की भिन्न भिन्न पहचान है, रत्नों की भी अपनी अपनी पहचान है। तो ये जो पहचान है, ये पहचान उसका स्वभाव है, समझना आप बात को। ये पहचान उसका गुणधर्म है, ये उसका स्वभाव है, और ये पहचान, इसको स्वर्णत्व कहते हैं। ये आपको सोने के मुकुट में भी देखने को मिलेगा। और ये स्वभाव इसको अपन फिर देखते हैं, ये अभी हम उदाहरण दे रहे थे, दृष्टांत दे रहे थे। देखते हैं ठीक है। ये अभी अपना स्वाध्याय चल रहा है ना, फिर अपन इस पे चर्चा कर लेंगे। तो स्वर्ण और स्वर्ण स्वभाव में अंतर समझ में आया ना। स्वर्ण वो वस्तु है जिसके अंदर ये स्वभाव है, और इस स्वभाव के कारण वो वस्तु स्वर्ण है। जैसे अपन मानव है, अब मानव में जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के होने के कारण ये मानव मानव होता है। मानवता हो तो मानव मानव कहलाता है। इसी प्रकार द्रव्य द्रव्य क्यों है? क्योंकि उसके पास द्रव्यत्व है। गुण गुण क्यों है? क्योंकि गुण में गुणत्व है। पर्याय पर्याय क्यों है? क्योंकि पर्याय में पर्यायत्व है। ये महत्व की बात है। अब बहुत तन्मय होकर के इस विषय पर बोला बोला जाता है। एक प्रकार से आप ऐसा समझ लो कि हम आंख तो खोल रहे हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा हमें, मुंह खोल रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। हम अंदर में ध्यान में रहते हैं तब जाकर के ये सारे आगम के सारभूत तत्व बता पाते हैं, वो भी पूरा जिनवाणी माता के आशीर्वाद से हम बताते हैं। तो हम ये पूछ रहे थे कि मुकुट में, अंगूठी में, कंठहार में और अन्य विभिन्न आभूषणों में स्वर्ण का भार भिन्न हो सकता है और होता ही है, पर हमारा आपसे एक प्रश्न है कि उनका मूल्य अलग-अलग है भार के आधार पर क्या स्वर्णत्व में भिन्नता है? ये एक प्रश्न है। क्या उनका पीतत्व, स्निग्धत्व, स्वर्ण में चिकनापन भी रहता है, स्मूथ होता है स्वर्ण, पीतत्व, स्निग्धत्व, भारत्व और उसके रासायनिक गुणधर्म देखो तो स्वर्ण जो है वो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण करो, जिसको एक्वा रेजिया बोलते हैं, उसी में स्वर्ण घुल सकता है। अथवा पारद में अर्थात मर्क्यूरी में स्वर्ण घुल सकता है, उसमें मिल सकता है। वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो मिलता है लेकिन फिर बाद में वहां से निकल भी सकता है उसकी प्रक्रिया से। वरना स्वर्ण पर कभी जंग नहीं लगती, शुद्ध स्वर्ण होगा ना, तो वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, शुद्ध रहता है, वैसे ही रहता है। उसके ऊपर एक आवरण काल के प्रभाव से हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि स्वर्ण की ईंटें हैं और ईंट पर कुछ काला सा आवरण आ जाता है, स्वर्ण के बहिर्मल को कालिका और अंतर्मल को कीट कहते हैं, किट भी कहते हैं, और दोनों मलों से रहित स्वर्ण को शुद्ध स्वर्ण कहते हैं। तो सिद्ध भगवान शुद्ध स्वर्ण के समान है, और संसारी प्राणी स्वर्ण पाषाण के समान है, और जो खदान से निकाला गया है अथवा किट कालिका से युक्त है और जिसकी शुद्धिकरण प्रक्रिया चल रही है, वो सम्यक दृष्टि, संयता संयत अथवा संयत मुनिराज है। तो इसमें कह रहे हैं, अरहंत भगवान के लिए कह रहे हैं, अरहतोपि पाक काष्ठागत कार्तस्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपम्। अरहंत भगवान को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जान लेने पर आत्मा का ज्ञान कैसे होता है, उसका खुलासा करते हुए आचार्य कह रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण देते हुए आचार्य कह रहे हैं कि अरहंत भगवान का जो आत्मरूप है उनकी आत्मा का जो रूप है अथवा उनकी आत्मा की जो अवस्था है वो कैसी है? तो बोलते हैं पाक काष्ठागत कार्त स्वरस्यैव 16 बाणी स्वर्ण के समान। पकाया जाता है अग्नि में 16 को और उसकी जो काष्ठा है ना चरम सीमा होती है पराकाष्ठा, उसको प्राप्त होने पर स्वर्ण परिशुद्ध हो जाता है, 24 कैरेट्स गोल्ड हो जाता है। तो उसके समान अरहंत भगवान की आत्मा है, परिस्पष्ट बोल रहे हैं। ततः इसलिए तत्परिच्छेदे अरहंत भगवान के आत्म रूप को जान लेने पर सर्वात्म परिच्छेद, सब आत्मा को सब आत्मा की पहचान हो जाती है, परिचय हो जाता है। सभी आत्माओं का वही स्वभाव है, इसलिए स्वभाव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। तत्रान्वयो द्रव्यम, अब द्रव्य किसको कहेंगे? तो बोलते जो अन्वय है, अनादिकाल से चला ही आ रहा है, अन्वय विशेषण गुण है और उसमें जो विशेषता है वो उसके गुण है। और अन्वय व्यतिरेका पर्याय और उसमें जो बार बार अंतर पड़ता रहता है, जो उसके आकार प्रकार आदि बदलते रहते हैं वो पर्याय है। तत्र भगवत्यर्हति सर्वतो विशुद्धि त्रिभूमिकम स्वमनसा समुत्पश्यति समयमुत्पश्यति। क्या सुंदर बात है, भगवान अरहंत में जो कि सब ओर से पवित्र हो चुके हैं उनमें स्वमनसा अपने मन के द्वारा, अर्थात मन के द्वारा का अर्थ ये लेना कि अपने मन में जो अपन ने आगम ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा, अपने उस विवेक के द्वारा त्रिभूमिकम अपि समयम उत्पश्यति। द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो समय अर्थात भगवान की आत्मा है उसको उत्पश्यति दृष्टिगोचर करता है। कौन? करने वाला। यश्चेतनोयम इत्यन्वयस् तद्द्रव्यम्, जो ये चेतन है अरहंत भगवान के अंदर अनादि से चला आ रहा है वह द्रव्य है। किनका द्रव्य है? अरहंत भगवान का द्रव्य है। ये चान्वय आश्रितम चैतन्यम इति विशेषण सगुण, और जो उस द्रव्य के आश्रित चेतना है वो गुण है, वो चेतन का विशेषण है। चेतना चेतन द्रव्य हो गया, चेतना गुण हो गया। और ये चैक समय मात्रावधृत काल परिमाणतया परस्पर परावृत्ता अन्वय व्यतिरेकास्ते पर्यायाश चित विवर्तन ग्रंथय इति यावत्। और जो एक समय मात्र समय की सीमा को स्वीकार करने के कारण परस्पर परावृत्ता एक दूसरे से पृथक हैं, वे अन्वय के अर्थात द्रव्य के व्यतिरेक हैं। पर्याय वो पर्याय हैं। चित विवर्तन ग्रंथय इति चेतना की अवस्थाओं में आने वाली जो गांठें होती है उसके समान पर्याय हैं। एक धागा है, धागे में सफेदी भी है और धागे में गांठ भी है, माला बन गई, सूत की माला बन गई। तो माला में जो वो गांठे हैं वो पर्याय हैं, माला जो है वो द्रव्य है और जो सफेदी है वो गुण है। तो उसमें आचार्य महाराज यहां पर सूत की माला का उदाहरण न देते हुए दूसरा उदाहरण दे रहे। देखिए आप कितनी सुंदर माला का वर्णन है। इति यावत् अथैवमस्य, इस प्रकार अब इनके त्रिकालमप्येक काल माकलयतः किनके? जो आकलन कर रहा है भगवान के बारे में, अपने मन में चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, उसके तीनों कालों को एक काल में आकलित करने वाले उस भव्य जीव की मुक्ता फलानी व प्रलंबे प्रालंबे चिद विवर्तांश चेतने एव संक्षिप्य विशेषण विशेष्यत्व वासनातरधानात् धवलिमानमिव प्रालंबे चेतन एव चैतन्यमंतरहितं विधाय केवलं प्रालंबमिव केवलं आत्मानं परिच्छिन्दतः। अब देखिए अरहंत भगवान को वो अपने विवेक से, अपने चित्त से, अपने आगम ज्ञान से जब दृष्टिगोचर करता है, विचार करता है अरहंत भगवान के विषय में, तो जैसे एक लंबी माला है उसमें मुक्ता फलानी अनेक मूर्ति है, तो वैसे भगवान का जो जीव द्रव्य है वो तो अनादि निधन है और उसमें चेतना की जो अवस्थाएं बनी है वो पर्याय है और जो चेतना है वो गुण है। तो विशेषण और विशेष इन सब के भेद को वो विलीन करता है और एक सफेद माला जब दिखती है दूर से, उसमें कितने मोती है, कौन किस मोती के बाद कौन सा मोती है और अंदर एक धागा भी है, इन सब विचारों को हटाकर चेतन में ही चेतना को अंतर्हित करके मात्र अरहंत भगवान की एक उस माला के समान उनकी आत्मा पर दृष्टिपात करता है, तो केवल भगवान की आत्मा को जानने वाले उस मनुष्य के तदुत्तरोत्तर क्षण क्षीयमाण कर्तृकर्म क्रिया विभागतया निष्क्रियम चिन्मात्रम भावमधिगतस्य जातस्य मणिरिवा कंप प्रवृत्त निर्मलालोकस्य अवश्यमेव निराश्रयतया मोहतमः प्रलीयते। बड़ी अद्भुत बात कही है कि उत्तर उत्तर क्षण वो एकदम ध्यान में चला गया भगवान के। पहले उसने द्रव्य गुण पर्याय का विचार किया, फिर स्वभाव का विचार किया और फिर मात्र भगवान की आत्मा पर ही वो स्थिर हो गया। और ऐसी अवस्था में क्या हुआ, कर्ता कर्म क्रिया इन सब का जो भेद था वो विलीन हो गया और प्रवृत्ति से या परिवर्तन से रहित एक चेतना मात्र जिसमें भरी हुई है, केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि सब कुछ जिनमें भरा हुआ है, ऐसे अरहंत भगवान के उस भाव को अर्थात उस पदार्थ को, उस अस्तित्व को जिसने जान लिया, ध्यान लगा लगा कर जान लिया, उसके लिए जात्यस्य मणिरिवाकंप प्रवृत्त, ये जातस्य मिसप्रिंट है, जात्यस्य होना था। जात्य का अर्थ होता है जैसे कोई रत्न परफेक्ट शुद्धतम अवस्था में हो, तब उसकी जो अवस्था होती है उसके समान निष्कंप प्रवृत्त निर्मलालोकस्य, उस रत्न में जो प्रकाश होता है वो ऐसे हिलता हिलता डुलता नहीं है, निष्कंप प्रवृत्त होता है। तो ऐसा ध्यान जब अपन अरहंत भगवान का लगाते हैं, यद्यपि ये कार्य सर्वसुलभ नहीं है, लेकिन जो भी लगा ले इस तरह का ध्यान, आचार्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अवश्यमेव नियम से अवश्य ही निराश्रयतया मोह तमः प्रलीयते। निराधार हो जाने के कारण मिथ्यात्व का अंधेरा उस भगवान की आत्मा के ध्यान रूपी प्रकाश में प्रलय को प्राप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या अद्भुत घटना है ये! भगवान का ध्यान लगाया और मिथ्यात्व समाप्त हो गया। यद्येवम्, अब कोई भव्य जीव आचार्य गुरु के वचनों को सुनकर हाथ जोड़कर इतना सुनने के उपरांत निवेदन करता है, यद्येवम्, यदि ऐसी बात है, हे गुरुवर, लब्धो मया मोह वाहिनी विजय उपाय, मुझे मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त हो गया। इस उपाय की पूर्णता बुद्धिपूर्वक नहीं होती, इस अपेक्षा से हमारा कहना था कि वास्तव में ये उपाय है, पर इसको अपन सम्यक तो प्राप्ति की विधि का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक सीमा के बाद, देखो जब तक अपन गुणा भाग कर रहे हैं वहां तक तो अपन जा सकते हैं विधि से, लेकिन उसके बाद जब एक ऐसी सहज अवस्था आएगी, जब ये विचार शांत हो जाएंगे, जब अपन कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर उठकर मेडिटेशन में चले जाएंगे, तब क्या करोगे? तब करना बंद हो जाएगा, तब होना प्रारंभ हो जाएगा। और सम्यक दर्शन होता है, वो किया नहीं जाता, ये कहने का अभिप्राय था। तो इस तरह नमो और हंताणम में यह महिमा भी गर्भित है, यह उसका अध्यात्म पक्ष है। और इसको एक प्रकार से मणि की उपमा दी है, और ये मणि चिंतामणि के समान है। सब कुछ प्रदान करने वाला है, लेकिन इसके लिए आचार्य कह रहे थे कि कुछ स्वाध्याय भी अपेक्षित है, कुछ इन शब्दावलियों का बोध भी आवश्यक है, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों में आए हुए शब्द हैं उनका परिचय भी आवश्यक है। शब्द अपने आप में ज्ञान नहीं है, लेकिन शब्दों के अर्थ का परिचय होने पर अपन वहां तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने पिच्छी शब्द का प्रयोग किया, तो पिच्छी शब्द जो है वो पिच्छी नहीं है, पर उसके अर्थ को जानने वाला, जिसने पिच्छी को देखा है, समझा है, वो अपने ज्ञान में पिच्छी को धारण कर लेता है, पिच्छी शब्द सुन करके। तो एक शब्द ब्रह्म है, एक ज्ञान ब्रह्म है, और इन दोनों के बीच में ये अर्थ ब्रह्म है। पिच्छी नाम का जो पदार्थ है वो अर्थ ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म और ज्ञान ब्रह्म, तीन प्रकार के ब्रह्म बताए हैं। भगवान को जाना, अपने को पहचाना, ये घटना बहुत दुर्लभ है। और अपने को पहचानने के बाद यदि विरक्ति के अभिमुख हो गए, वैराग्य की दिशा में चले गए, तब तो फिर पूरी दिशा बदलने के साथ दशा बदलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जैन शासन में पहले दिशा का निर्धारण है, फिर दशा का परिवर्तन है। ओम नमः अरहद्भ्यः अरिहंत्रिभ्यः अरहंत्रिभ्यः अरोहद्भ्यः नमो अरहंताणम् नमो अरिहंताणम् नमो अरुहंताणम्। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महंग्य जे। ओम नमो रते भगवते परम भट्टारकाय महादेवादिदेवाय अरहत परमेष्ठिने अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ऐं अर्हम सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्य ध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवली प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन मात्र स्वरूपायै भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रूम रौम रह आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासनम।